الحمد لله رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم یہ سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اپنے مرشد سے ملاقات کے بعد بعض اوقات تشنگی نامعلوم اداسی کا احساس ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا مرید کی طلب کا کاسہ بڑا ہوتا ہے یا مرید کو فیض لینا نہیں آتا؟ ایسی بات نہیں ہے، نہ تو مرید کی طلب کا کاسہ بڑا ہوتا ہے اور نہ یہ کہ مرید کو فیض لینا نہیں آتا، دونوں ہی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک انڈیکیشن ایسی ہے کہ آپ کا مرشد صاحب علم ہے اور اس کے پاس جو علم ہے وہ سارے کا سارا لدنی علم ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ اگر کہیں آپ کو بہت مزے کا شربت پینے کو ملے تو گرچہ شربت پی کے آپ کا پیٹ تو بھر جائے لیکن نیت نہ بھرے، دل یہ چاہے کہ میں مزید پیتا رہوں، حالانکہ پیٹ میں گنجائش نہیں رہتی۔ تو جہاں سے علم لدنی آپ کو حاصل ہوتا ہے اور جہاں سے واقعتاً فیض جاری ہے، اس انسان پہ اور اس جگہ پر اللہ تعالی کی رحمت ہے، تو وہاں جب بھی انسان جائے گا تو خواہ کتنی ہی زیادہ دیر کیوں نہ بیٹھا رہے، اٹھتے وقت اس کا دل یہی چاہ رہا ہوگا کہ میں کچھ دیر اور یہاں بیٹھ جاؤں۔ اسی طرح اگر اپنے مرشد کے پاس بیٹھا ہے تو آپ کے مرشد اگر صاحب علم ہے تو وہ آپ سے جتنی بھی بات کر رہے ہوں گے، خواب و دنیاوی بات کیوں نہ ہو رہی ہو، اس کے پیچھے اس علم کا ایک زور ہوتا ہے، اس علم کی ایک فورس کام کر رہی ہوتی ہے، اس لیے آپ کے مرشد کی زبان سے نکلنے والی دنیاوی باتیں وہ بھی دل میں اترتی چلی جاتی ہیں۔ آپ ان سے دنیاوی مشورہ کریں گے، وہ جب دنیاوی مشورہ دیں گے تو اس کے پیچھے بھی ان کے اس علم کی فورس کام کر رہی ہوگی اور وہ مشورہ آپ کا دل تسلیم کر لے گا کہ ہاں اس پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو وہ تشنگی اس بات کی ہوتی ہے جو میں نے شربت کی مثال آپ کو دی۔ تو ادروائز اس میں مرید کے کاسہ بڑے ہونے کی اور اس کے فیض حاصل کر لینے کی صلاحیت نہ ہونے کی بات نہیں ہے۔ کیا روحانیت میں ہر طاقت پر روح کمزور روح کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے؟ یہ قانون فطرت ہے۔ بڑا مقناطیس اگر اس کے قریب کوئی چھوٹا مقناطیس جائے گا تو وہ مقناطیس چھوٹا مقناطیس اپنی صلاحیت کھو دے گا اور لوہے کے ٹکڑے کی طرح بڑے مقناطیس کی طرف کھینچتا چلا جائے گا۔ جب کوئی اسٹوڈنٹ اپنے پروفیسر سے ملے گا تو اسٹوڈنٹ کا علم نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا اور اس پروفیسر کی طرف وہ اسٹوڈنٹ کھینچتا چلا جائے گا کہ وہاں سے علم حاصل ہوگا۔ تو ایک طرف بڑا الاؤ جل رہا ہوگا، اس کے قریب چھوٹی آگ اگر جلے گی تو اس کی تپش محسوس نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بڑا الاؤ جو ہے اس کی تپش اسے اوورویلم کر لے گی، چھوٹی آگ کی تپش۔ یہ قانون فطرت ہے اور ये बुरी सेंस में नहीं है, बल्कि एक अच्छी सेंस में है कि जब एक कम इल्म इंसान ज्यादा इल्म वाले आदमी से मिलता है तो वो उसकी तरफ खींचेगा, ज्यादा इल्म वाला आदमी उस आदमी पर छा जाएगा, लेकिन उसके नतीजे में कम इल्म रखने वाले इंसान के इल्म में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। इसी तरह कम रूहानियत रखने वाला इंसान अगर एक बहुत बुलंद पाया वली अल्लाह के पास जाके बैठेगा तो लगेगा ऐसा कि मैं अपना सब कुछ खो गया, लेकिन दर हकीकत होगा ये कि उनकी सोबत में बैठने से ये कम रूहानियत रखने वाला इंसान रूहानियत के मदारिज बड़ी तेजी से तय करने लगेगा। तो वो फायदे की बात है, लेकिन असूली तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम ये कहते हैं कि जुज कुल में मदगम होता है, कुल जुज में कभी नहीं हो सकता, तो इसी तरह कम इल्म वाला आदमी ज्यादा इल्म वाले आदमी को ओवरवेल्म नहीं कर सकता, ये कानून फितरत है। लेकिन फायदा यह है कि जब हम अपने से बड़े लोगों में बैठते हैं, इल्म के लिहाज से बड़े लोग, अकदार के हिसाब से बड़े लोग, रूहानियत के लिहाज से बड़े लोग, तो फिर पानी का बहाव बुलंदी से निशेप की तरफ होता है, पानी का बहाव कभी निशेप से बुलंदी की तरफ नहीं जाएगा। तो ये फायदे की बात है कि हम जब ज्यादा इल्म वाले के पास बैठते हैं तो गेन करते हैं, ज्यादा इल्म वाला हमसे गेन नहीं कर पाएगा। अल्लाह ताला पर भरपूर तवक्कुल के बावजूद बाज़ औक़ात इंसान किसी मुश्किल में एकदम बुरी तरह डगमगा जाता है और अपनी तकलीफ का अहवाल अपने प्यारों के सामने बयान कर देता है। इस कमजोर लम्हे से कैसे बचा जाए? पहली बात तो यह है कि अगर इंसान को ये एहसास हो गया कि मेरा रब ताला पर भरपूर तवक्कल है तो समझ लीजिए कि शैतान बहका रहा है, तवक्कल नहीं है। अगर रब पर तवक्कल है तो वहां तो इंसान, अभी मैं अभी एक लम्हा पहले आपसे कह रहा था कि बड़ा आग का अलाव अगर है उसके करीब छोटी सी आग आप जलाएं तो उस आग की तपिश कहीं नहीं जाएगी। तो जब इंसान अपने आप को यह समझे कि मैं बड़ा मतवक्कल हूं तो समझ लीजिए कि शैतान बहका रहा है। जो वाकईतन बहुत ज्यादा मतवक्कल है, रब ताला पर तवक्कल रखता है, उसको ये एहसास ही नहीं होता। वो तो गरीब हर वक्त इस गम में घुलता जाता है कि मैंने अपने रब पे तवक्कल नहीं रखता। जो वाकई साहिब ईमान है वो तो गरीब इसी परेशानी में हर वक्त रहता है कि मेरा ईमान पुख्ता नहीं हुआ अभी तक। तो जो बड़ा साहिब इल्म है वो अपने आप को कहता है कि मैं तो तालिब इल्म हूं, मतलब अभी इल्म की एक जिसको टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं उससे भी वाकिफ नहीं हुआ। तो जो जो इंसान बड़ा होता चला जाता है वो अपनी नजरों में छोटा होता जाता है। इसीलिए जो वाकई सही मायने में खानदानी लोग हैं उनको अपनी बड़ाई करते कभी नहीं सुनेंगे आप। जो वाकई कुछ जानते हैं उनको ये कहते हुए कभी नहीं सुनेंगे कि मैं बहुत कुछ जानता हूं। वो ये एक ही बात आपसे कहेंगे कि साहब ये तो इल्म तो बेहद दो हिसाब है, जिसकी लिमिट कोई नहीं है। तो मुझे तो दुख ये है कि तमाम उम्र गुजारने के बावजूद मैं कुछ इल्म सीख ना सका, क्योंकि इल्म इंसान की निगाह को वसत देता है, इल्म इंसान की मेंटल होराइजन को ब्रॉड करता है। तो जो जो मेंटल होराइजन ब्रॉड होता है इंसान का, उसकी निगाह उफ के पार जाने लगती है और उस पर असरार खुलते चले जाते हैं। तो जो जो असरार खुलते हैं तो वो समझता है कि मैं कुछ जानता ही नहीं, अभी तो मालूम नहीं, न जाने कितना कुछ बाकी है जहां तक मेरी नजर नहीं गई। इसकी मिसाल ये है कि एक फर्ज कर लीजिए 1000 फुट लंबा एक हॉल है, एक आदमी पर उस हॉल का पहला दरवाजा खुलता है और एक छोटा सा बल्ब वहां उसको ऑन कर देता अंधेरे में कोई कि ये देख लो। तो अब वो देखता है तो वहां फर्ज कर लीजिए कि उसको नजर आता है 4 कुर्सियां पड़ी हैं, एक टेबल पड़ा है। तो बाहर आके लोग उससे पूछते हैं कि उस हॉल के अंदर तुम दाखिल हुए थे, तुमने क्या देखा? कि कुछ भी नहीं हुआ, तो अंधेरा है, सिर्फ 4 कुर्सियां पड़ी हैं, एक टेबल पड़ा है। उसी आदमी पर दूसरा दरवाजा खोल दिया जाता है और दूसरा बल्ब रोशन कर दिया जाता है, तो देखता है कि 4 कुर्सियां मेज से, उसके आगे बड़े खूबसूरत सोफे पड़े हैं, कारपेट बिछा है। बाहर निकलता है तो उससे कोई पूछता है, कहता है वो मैं गलत समझा था कि उस हॉल में सिर्फ 4 कुर्सियां मेज है, वहां तो बहुत खूबसूरत सोफे और कारपेट भी है। तो तीसरा दरवाजा खुलता है, वहां देखता है कि बहुत खूबसूरत बेड्स पड़े हैं। तो बाहर आके कहता है कि मैं धोखा खाता रहा, मैं यही समझता रहा कि वहां सिर्फ कुर्सियां पड़ी हैं, वहां तो बहुत कुछ है। तो अपने इल्म को वो कम बताने लगता है लोगों को कि मैं ही गलत समझा था, वहां तो बहुत कुछ है। तो जूं जूं उस पर उस हॉल के मुख्तलिफ हिस्से रोशन होते चले जाएंगे, उसका इल्म बढ़ता जाएगा और वो लोगों को बताएगा वहां ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, वहां तो बहुत कुछ है, सिर्फ मैं धोखा खाता रहा क्योंकि मेरी निगाह काम नहीं कर रही थी, अंधेरे में मैं नहीं देख पाता था। तो अब वो अपने आप को इल्जाम दे रहा है, ये नहीं कह रहा कि हॉल में कुछ नहीं है, वहां तो 4 कुर्सियां पड़ी हैं। तो जो जो इंसान का इल्म बढ़ता है, इंसान की बड़ाई बढ़ती है, बुलंदी की तरफ जाता है। आप देखिए कि हम अगर ग्राउंड लेवल पर खड़े होके देखें तो हमें हमारी निगाह की हद जो है, जिसको हम होराइजन कहते हैं, जहां जमीन और आसमान मिलते दिखाई देते हैं, तो अगर खुले फील्ड में खड़े होके हम देखेंगे तो 3.5 मील दूर तक हमारी निगाह काम करेगी, वहां जमीन और आसमान हमें मिलते दिखाई देंगे, या यूं कहिए कि उफ्क हमें सिर्फ 3.5 मील दूर दिखाई देगा। अगर हम एक बुलंद बिल्डिंग पर चले जाएं, पहाड़ की चोटी पर खड़े हो जाएं, तो हमारी निगाह की हद जो है वो इंक्रीज करके 11.5 मील हो जाएगी, कि उफ्क की वही लाइन जो है, लाइन ऑफ होराइजन, वो हमें 11.5 मील दूर दिखाई देगी। और अगर हम जहाज पर उड़ रहे हैं, आसमान पे हैं, तो जहाज में उड़ते हुए जब हम देखते हैं तो हमारी लाइन ऑफ होराइजन जो है 27 माइल्स होती है, 27 मील दूर। आंखें हमारी वही हैं जो पहले हैं, हम भी वही हैं, लेकिन हमारी निगाह दूर तक देखने लगी है तो फर्क सिर्फ एक आया है। वो फर्क है कि हम बुलंदी पर चले गए हैं। तो जो जो इंसान इल्म के जीने तय करता है तो उसकी निगाह में वसत पैदा होती है, और जो जो निगाह में वसत पैदा होती है اس کی بصیرت بڑھ جاتی ہے, وہ بہت دور تک دیکھنے لگتا ہے, حتیٰ کہ جب رب تعالیٰ اس پہ عنایات کر دیتا ہے اور اتنا علم عطا کر دیتا ہے کہ اسے کشف حاصل ہو جائے تو وہ ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ ہو جاتا ہے. پھر اس کے لیے کون و مکان کوئی معنی نہیں رکھتے, وہ اپنی ہی جگہ کھڑا ہوا مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا اپنے کمانڈر کو انسٹرکشن دے دیتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے منور کرو, گرچہ اس کا کمانڈر کئی ہزار میل دور لڑ رہا ہے. تو پھر وہ اس مقام پر جاتا ہے کہ اس کے لیے ٹائم اینڈ سپیس کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے. وہ 5,000 سال پہلے بھی دیکھ لے گا, 10,000 سال پہلے کے واقعات بیٹھا ہوا دیکھ لے گا, 5-10,000 سال, 20,000 سال, جہاں تک دیکھنا چاہے وہ آنے والے واقعات پر نظر ڈال لے گا. وہ یہ بلندی اس کو اصل میں علم دیتا ہے. رب پر جو توکل ہے ہماری, جب بھرپور توکل ہو جاتی ہے تو پھر مصیبت مصیبت نہیں لگتی, راحت راحت نہیں رہتی, پھر انسان وہ مومن بن جاتا ہے جس کی تعریف حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کی, کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ نہ اس کو کچھ پانے کی خوشی ہے نہ کچھ کھونے کا غم ہے. تو جہاں شیطان ہمیں بہکائے کہ میری تو توکل رب پر بہت زیادہ, تو سمجھ لے کہ میں گیا, سب کچھ کھو گیا, کچھ نہیں ہے. تو شیطان کے چنگل سے بچتا رہے انسان. جب رب تعالیٰ پر بھروسہ پوری طرح ہو جائے گا, میں بھروسے کی بات کر رہا ہوں توکل سے ہٹ کے, جب رب پہ بھروسہ پورا ہو جائے گا تو پھر ڈگمگاتا نہیں انسان. اور جب رب کے عشق میں مبتلا ہو جائے تو پھر بدترین مصیبت کو بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کی عطا کردہ ہے, سینے سے لگاؤ اسے خوش ہو کر, کہ جس سے میں عشق کرتا ہوں یہ اس نے عطا کی ہے مجھے. تو پھر وہ اپنے زخموں سے گرنے والے کیڑے کو بھی زمین سے اٹھا کے دوبارہ زخم پر رکھ لیتا ہے. تو اگلا سوال انہی صاحب نے کیا ہے کہ کیا مرید جب اپنے آپ کو بند گلی میں محسوس کرنے لگے تو اسے رہنمائی اور حوصلے کے لیے اپنے مرشد سے رجوع کرنا چاہیے. اصل میں انہوں نے لفظ مرشد کامل لکھا ہے, میں اس کو امٹ کر گیا تھا جان بوجھ کے, کہ اپنے مرشد کامل سے رجوع کرنا چاہیے یا خاموشی سے غیبی مدد اور حالات بدلنے کا انتظار کرنا چاہیے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص کو اپنا مرشد مانتا ہوں تو مجھ پر فرض یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ جسے میں نے اپنا مرشد مانا ہے وہ سب سے بہترین مرشد ہے, تبھی میں اسے فالو کر پاؤں گا, ورنہ بہتر سے بہتر کی تلاش میری جاری رہے گی اور میں اپنے مرشد کی کسی کی بات پر عمل نہیں کر پاؤں گا. تو جب انسان اپنے مرشد کو بہترین مرشد سمجھ لے, اسے یہ یقین آ جائے کہ اس سے اچھا صاحب علم کوئی نہیں, تو پھر آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر عمل کرے گا. اور یہی بنیادی ریکوائرمنٹ ہے آگے بڑھنے کے لیے. اگر میں ایک کالج میں پڑھتا ہوں اور وہاں میرے لیکچرر ہیں ایک سبجیکٹ کے, تو اگر میں انہیں اچھا صاحب علم ہی نہیں سمجھوں گا, यही समझो कि लेक्चरर हैं, तो कोई मुझे बताएगा कि साहब गवर्नमेंट कॉलेज में फला लेक्चरर बहुत अच्छे हैं, तो मैं उनके पास जाने के तगुदो में पड़ जाऊंगा। वहां जाऊंगा तो पता चलेगा कि यूनिवर्सिटी में फला प्रोफेसर बड़े अच्छे हैं, तो मैं उन्हें छोड़कर उन प्रोफेसर के पीछे जाना शुरू हो जाऊंगा। वहां जाऊंगा तो पता चलेगा कि ये प्रोफेसर नहीं, दूसरे प्रोफेसर तो इनसे भी अच्छे हैं, उन्हें छोड़कर उधर चला जाऊंगा। नतीजा क्या निकलेगा कि मैं किसी से कुछ नहीं हासिल कर पाऊंगा, मैं इल्म में कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा, बस मैं पिलर टू पोस्ट दौड़ लगाता रहूंगा। लेकिन अगर मैंने ये समझ लिया कि यही कॉलेज के जो लेक्चरर हैं यही बेहतरीन हैं, तो फिर जो कुछ वो मुझे पढ़ा रहे होंगे मैं उसे एब्जॉर्ब करूंगा और यूं मेरी इल्म की तरक्की का अमल शुरू होगा। तो एक वक्त वो आएगा कि ये लेक्चरर खुद कह देंगे कि भाई अब इससे अगला लेवल तुम्हें चाहिए, फलां प्रोफेसर के पास चले जाओ और उससे पढ़ो तुम। तो वहां जाके जब मैं उन्हें बेहतरीन समझकर उनसे सीखना शुरू करूंगा तो मेरे इल्म में मजीद इजाफा हो जाएगा। तो वो प्रोफेसर एक वक्त आएगा मुझे कह देंगे कि मैं यहीं तक तुम्हें ले जा सकता था, फलां प्रोफेसर के पास जाओ, वो इससे आगे तुम्हें ले जाएंगे। तो ये अमल फिर जारी रहता है इल्म सीखने का। तो यूं मैं मुर्शिद कामिल में से कामिल का लफ्ज उड़ा रहा था, तो हमें तो अपने मुर्शिद को समझना ही कामिल है, तभी तो हम उनकी बात को सुन सकेंगे, उस पर अमल करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर मैं वाकई किसी साहिब इल्म के पास जा रहा हूं तो मैं बंद गली में कभी अपने आप को महसूस नहीं करूंगा। मैं अपने मुर्शिद साहब से अगर ये कहूंगा कि साहब मैं मुझे लगता है कि इस मामले में मैं स्टक कर गया, कोई पेशरफ्त कर नहीं पा रहा मैं, तो वो फौरी तौर पे मुझे गाइड कर देंगे कि इससे निकलने का ये रास्ता है। तो बंद गली कभी आ नहीं पाती। और अगर वाकई रब ताला ने ऐसे हालात बना दिए हैं कि वो मेरी ट्रेनिंग कर रहा है कि मेरे अंदर बर्दाश्त और सब्र पैदा हो जाए, रब ताला मेरी ट्रेनिंग कर रहा है कि अपने रब की दी हुई मुश्किलात को हंसी खुशी अपने गले से कैसे लगाया जाता है, तो मेरे मुर्शिद साहब मुझे बता देंगे कि मियां इससे सभी गुजरते हैं, ऐसे ये सभी के साथ पेश आता है, कुछ अरसे की बात है, इस मिल में से गुजरना तुम्हारा खत्म हो जाएगा और फिर राहत ही राहत है तुम्हारी। तो बंद गली फिर भी ना आई पाई कि मुझे आने पाई कि मुझे पता चल गया कि ये जो मुश्किल है मेरी, जो मैं फील कर रहा हूं कि मैं बंद गली में हूं, ये सबके साथ होता है, इधर हकीकत बंद गली नहीं है, इट्स ए पार्ट ऑफ ट्रेनिंग जो मुझ पर इम्पार्ट की जा रही है। तो बंद गली तो ना हुई कि मैं अंजाम जानता हूं, बंद गली वो होती है जहां मुझे ये ना पता हो कि आइंदा क्या होने वाला है। तो अगर मेरे मुर्शिद कामिल हैं तो वो मुझे उस लम्हे पर भी थामे रखेंगे जहां मैं दौड़ दौड़ कर हलकान हो गया हूं, गिरने वाला हूं, और अभी मेरी दौड़ खत्म नहीं हुई है, तो मुझे हौसला दिए रखेंगे कि चंद कदम और निकल जाओगे इस मुश्किल से, फिक्र ना करो। तो बंद गली नहीं आती मुर्शिद के होते हुए। और इसी सवाल में जो आखिरी हिस्सा है इसका कि खामोशी से गैबी मदद और हालात बदलने का इंतजार करना चाहिए, तो याद रखिए कि रूहानियत में बेअमली बड़ी सख्ती से मना है, फकीर बेअमल नहीं होता, फकीर जद्दोजहद में یقین رکھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جد و جہد کی جائے. اس کی نظر ایک بات پر رہتی ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو فقیر ہر وقت مجاہدوں کی طرح کمر کسے رکھتا ہے عمل کے لیے, وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھتا نہیں ہے کہ غیب سے کوئی مدد آئے گی میرے کام سنور جائیں گے. وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے کہ میرا رب اچھا کرے گا, اللہ مجھے ان مشکلات سے نکال لے گا, مجھے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے جو رب کی طرف سے مجھ پر فرض ہے کہ میں کوشش کرتا رہوں. وہ کوشش کرتا رہتا ہے, غیبی مدد کا انتظار نہیں ہوتا. وہ تو اس کا بھروسہ ہے, اس کا ایمان ہے کہ میرا رب میری مدد فرمائے گا. نیکسٹ کوشچن ان کا انہی صاحب کا ہے کہ اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دینے اور اپنا معاملہ رب تعالیٰ کے سپرد کر دینے کے بعد بھی کیا کوئی فکر یا کاوش کرنی چاہیے یا بے نیاز ہو جانا چاہیے؟ یہ پرلے درجے کی بےمانی ہے, ڈس آنیسٹی ہے کہ انسان اپنے معاملات رب کے سپرد کر دے اور پھر بھی وہ نتائج کے لیے فکر مند رہے. رب کے سپرد اپنے معاملات کر دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوشش چھوڑ دیں, کیونکہ وہ ہم پر فرض ہے. جیسے نماز ہم پر فرض ہے, ہم نماز کو ترک نہیں کر سکتے. روزہ ہم پر فرض ہے, زکوٰۃ ہم پر فرض ہے, ماں باپ کی خدمت ہم پر فرض ہے. ہم فرائض سے منہ نہیں موڑ سکتے کہ ہم آنسریبل ہو جائیں گے اللہ کو, ہم سے جواب طلبی کی جائے گی کہ یہ چیزیں تم پر فرض تھیں, تمہاری ڈیوٹی تھی, یہ ڈیوٹی پوری کیوں نہیں ہوئی. تو کوشش اور عمل یہ ہم پر فرض ہیں, ہم اپنے فرض کو پورا کرتے رہیں گے. لیکن اللہ کے سپرد کر دینے کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری کوشش اور ہماری محنت کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہو جائے, جو بھی پھل مل جائے, اس کا خواہ وہ ہماری توقعات کے مطابق ہو یا توقعات کے خلاف, ہم اس کو قبول کر لیں ود اے اسمائلنگ فیس, ماتھے پر تیوری ڈال کر نہیں, بڑی خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کر لیں, جو بھی نتیجہ آیا کہ یہ میرے رب کا عطا کردہ ہے اور یہی میرے حق میں بہتر ہے. یہ ہے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینے کا مطلب. لیکن فکر کرنا اور کوشش کرنا ہم پر فرض ہے. میں فکر کو بمانی پریشانی نہیں کہہ رہا, پریشانی تو اللہ پر بھروسے کے خلاف بات ہے. لیکن فکر کرنا مراد یہ ہے کہ غور و خوض کرنا کہ میں اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کروں, اس پر کس طرح سے کوشش کروں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, یہ فکر ہے. اب یہ اگلا سوال ان کا خاصا ٹرکی ہے, اور کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے اللہ کی ول کو کیسے سمجھا جائے اور جانا جا سکتا ہے تاکہ انسان اسی راستے کا انتخاب کرے جو اللہ کی مرضی ہے, کیونکہ آگے چل کر ہونا تو وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہے, حتمی فیصلہ تو اللہ ہی کا ہوتا ہے. ये वो बात है जिसके लिए हमें अक्सर लोगों को ये, मैं इन्हें लाइट वे कह रहा हूं कि धोखा खाते हुए कि वो पढ़े लिखे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश किया करता हूं कि भाई ये कोशिश करने से पहले क्यों आप ये कह रहे हैं, जरा दुआ करके जरा देखिए इसमें कामयाबी हो जाएगी मुझे। ये तो कोई मेहनत नहीं है, ये तो कोई भरोसा नहीं रब पर, ये तो कोई तवक्कल नहीं है रब पर। सबसे बड़ी बात यह है कि उस भरोसे के खिलाफ है ये बात कि मेरा ईमान है कि मेरा रब मेरी बेहतरी चाहता है और वो वही कुछ करेगा जो मेरे बेहतरीन मफाद में है। ये ईमान है मेरा। तो अगर ये ईमान है मेरा और इस पर मैं मजबूती से कायम हूं तो फिर गम काहे का है, फिर तो मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। दरहकीकत इंसान को जब अल्लाह ताला उस पर ये कर्म करे कि ये समझ आ जाए कि मेरा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां जाके खत्म हो जाता है, मेरी जिम्मेदारी कहां जाके खत्म हो जाती है और उससे आगे रब का काम शुरू हो जाता है। वो जो लाइन ड्रॉ होती है, अगर वो लाइन हमें समझ आ जाए कि वो लाइन ड्रॉ हुई भी है कि जब हमने बेहतरीन सलाहियतों से काम लेते हुए बेहतरीन तरीके पर मेहनत करके भरपूर कोशिश करके अपना काम मुकम्मल कर लिया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, अब इससे आगे रब का काम है कि उसका फल मुझे क्या देता है वो, और रब अपने काम को सबसे ज्यादा बेहतर समझने वाला है। और उसके साथ ये ईमान के अल्लाह वो कुछ करेगा, मेरी मेहनत का इनाम वो कुछ अता करेगा जो मेरे हक में बेहतरीन होगा, ये ईमान है, ये पुख्ता यकीन है रब पर हमारा। तो फिर ये क्या देखना कि अल्लाह की मर्जी इसमें क्या है, वो तो ये है कि जो कुछ हुआ है वही अल्लाह की मर्जी थी, जो कुछ मिला मुझे वही अल्लाह की मर्जी थी, वही अल्लाह का फैसला था। तो ये अदर वे राउंड है जिसको हम अपने मफाद में, जैसे और बहुत सी चीजों को हम इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं, हमने इस मेथड को भी इम्प्रोवाइज करके ये कर लिया कि अच्छा पहले अल्लाह की मर्जी जान लो, फिर अगर वो अल्लाह की मर्जी फेवरेबल है तो हम वो काम कर लेंगे, अदरवाइज ड्रॉप कर देंगे, जबकि मोमिन का ये काम नहीं है। और ये जो कुछ मुकद्दर की बात की के आगे चलकर होना तो वही है जो मुकद्दर में लिखा है, साहब शायद मैं इससे ज्यादा एग्री ना कर सकूं आपसे। मैं रब का नायब हूं इस जमीन पर और मेरा रब कादर मुतलिक है, और उससे बेहतर इंसाफ करने वाला कोई नहीं है। तो ये करीने इंसाफ नहीं होगी बात कि कादर मुतलिक का नायब मजबूर महज हो। तो कादर मुतलिक का नायब कम से कम नीम कादर तो हो सकता है, और वो अल्लाह ने हमें बनाया है। यह आलम कॉज एंड इफेक्ट का आलम है, इसको हम आलिमुल असबाब कहते हैं उर्दू में, वो याद आ गया, उस वक्त याद नहीं आ रहा था। तो असबाब हमें असबाब पर जाना है, हमें हाथ पांव हिलाने हैं। रब ताला मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब पैदा कर देगा, हमें हाथ पांव हिलाना है। हाँ मुकद्दर में वो चीजें जो तकदीर मुबरम में लिखी हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटा हिस्सा है रब का, तकदीर का बहुत छोटा हिस्सा है जो रब ने लिखा है। बाकी तो तकदीर हम खुद लिखते हैं, अल्लाह ने हमें इस चीज का इख्तियार दे दिया है। ये जो जबर कदर का मामला है वो क्या है, इस पर बहुत किताबें लिखी गई, बहस मुबहसे होते हैं, यहां भी सवालात पूछे जाते हैं इस बारे में। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत से मामलात में इख्तियार दिया है, जबर नहीं है हम पर, हम मजबूर नहीं हैं, हमें अच्छे और बुरे की तमीज सिखा के, अच्छे और बुरे रास्ते दिखा के अल्लाह ने इख्तियार दे दिया और फैसले का हक हमें दे दिया कि हम जो चाहे फैसला कर लें। ये जो सजा और जजा का निजाम है ये है ही इसलिए कि हम बाइख्तियार हैं अपने फैसलों में, कदम उठाने में, अपने अमल में हम बाइख्तियार हैं। फरिश्ते का कभी कोई हिसाब नहीं होगा, रोजे हिसाब अमालनामा उसके दाएं या बाएं हाथ में नहीं पकड़ाया जाएगा, इसलिए कि उसको इख्तियार कोई नहीं, वो सिर्फ हुक्म का गुलाम है। जमादात से कोई हिसाब किताब नहीं होगा कि वो मजबूर महज हैं, उनके पास इख्तियार नहीं है। हिसाब उससे तलब किया जाता है जिसको इख्तियार दे दिया जाता है। सजा और जजा वहां होती है जहां इंसान को आजादी होती है अपने इख्तियार को इस्तेमाल करने की, तो गलत इस्तेमाल पर सजा है, सही इस्तेमाल पर जजा है। तो ये निजाम ही इसलिए कायम हुआ है सजा और जजा का, दुनिया में भी और आखिरत में भी, कि हम बाइख्तियार हैं। तो मुकद्दर का एक बड़ा हिस्सा हम खुद लिखते हैं। हां, विटोपार रब यूज करता है जब हम अपनी कोशिशों से किसी ऐसे एरिया में एंटर होते हैं जो हमारे लिए नो गो एरिया है, अल्लाह का जो ग्रेटर प्लान है उसमें कहीं हम इंटरफेयर करने लगते हैं या इस्तेमाल होता है, या हमारी कोशिशें ऐसी डायरेक्शन में होती हैं जिसका इनाम उस ग्रेटर स्कीम का हिस्सा ना हो सके, वहां रब ताला वीटो पावर यूज करके हमें हमारे मेहनत का इनाम वो नहीं देता जो जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन फिर वो दूसरी जगह हमें कंपनसेट कर देता है। यह जरूर है कि अल्लाह किसी की मेहनत को अपने जिम्मे उधार नहीं रखता, उसका फल वो किसी दूसरी जगह दे देता है। एक और इनका सवाल है कि बाज औकात कुछ बुजुर्ग खल्के खुदा से कटकर तन्हाई क्यों इख्तियार कर लेते हैं, हालांकि मखलूक उनसे मुलाकात के लिए बेहद मुश्ताक होती है। इस्लाम में तर्क दुनिया नहीं है, मेरे नजदीक, मेरी अंडरस्टैंडिंग में हर वो बात दुरुस्त नहीं है जो किताब और सुन्नत से साबित ना हो सके। किताब और सुन्नत के खिलाफ जो भी बात है वो दुरुस्त नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्के दुनिया नहीं की है, ये असहाब जो खल्के खुदा से कट के बैठ जाते हैं, दूर हो जाते हैं, उसकी एक वजह है। मैंने शायद यहां किसी जमाने में कभी जिक्र इस बात का किया हो कि मुझे परेशानी ये थी कि मेरी मसरूफियात जो हैं मुख्तलिफ खल्के खुदा से मुतालिक, वो मेरे फराइज की अंजाम दही में خلل ڈالنے لگ گئی تھیں, تو بہت اس پر میں اپسٹ ہوتا تھا کہ یہ ہوگا کیا, کہ مجھے تو اپنے فرائض کے لیے اللہ کو جواب دینا ہے. میں ایک سرکاری کام کے سلسلے میں کراچی گیا تو جمعے کے روز میں 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں. تو کراچی میں جمعہ آ گیا اس دن, تو میں آفس سے اٹھا اور مسجد میں چلا گیا. اس مسجد کا نام مجھے یاد ہے کہ اس کا نام شاید مسجد صدیقیہ تھا, اور 12 بجے سوائے میرے اس مسجد میں کوئی تھا نہیں. تو میں صف پہ بیٹھنے لگا کہ میں دل میں اللہ اللہ کرتا ہوں کہ زوال کا ٹائم ہے, اس کے بعد میں تحیت المسجد کے نوافل پڑھوں گا اٹھ کے. پھر تو بیٹھنے لگا تو سامنے دیوار پر ایک چارٹ مجھے دکھائی دیا, تو جو مجھے پریشان کر رہی تھی چیز, اس کا اصل میں جواب لکھا ہوا تھا اس چارٹ پر. تو میں نے قریب جا کے اسے پڑھا تو اس پہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوقات کو, دن کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا. ایک حصہ امور مملکت کے لیے اور بیرونی وفود سے ملاقات اور صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے وقف تھا 8 گھنٹے. دوسرا حصہ 8 گھنٹے کا آپ کی ازواج مطہرات اور فیملی لائف, اس کے لیے مختص تھا. اور تیسرا حصہ 8 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیا ہوا تھا عبادات اور اپنے آرام کے لیے. تو یوں زندگی بہت ہی خوبصورتی سے آرگنائز ہوئی بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو وہ میرے سوال کا جواب مجھے مل گیا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو بزرگ جن کا آپ نے کہا کہ وہ ترک ملاقات مخلوق کر لیتے ہیں, مخلوق اس ڈویژن کو قائم نہیں رہنے دیتی. خلق خدا کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دن خلق خدا کے لیے مخصوص ہیں اس کے علاوہ بھی ہم ملاقات کریں, اور جب چاہیں ہم ملاقات کے لیے چلے جائیں. اور بعض ستم ظریف تو باقاعدہ چٹ پر لکھ کے بھیجتے ہیں کہ فقیروں کا دستور یہ رہا ہے کہ خلق خدا میں سے جب بھی کوئی ملنے آیا فوراً ملاقات کر لی. تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فیملی لائف وہ بھی نہ صرف یہ کہ ڈسٹرب ہوتی ہے, بلکہ اس کا جو خوفناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے فرائض جو اس پر اللہ کی طرف سے عائد ہیں فیملی کے سلسلے میں, ان کو سر انجام نہیں دے پاتا کہ خلق خدا جینے نہیں دے رہی. آفس کے کام کے روزگار کے معاملات کے لیے جو اس نے ٹائم مختص کیا ہے, وہاں خلق خدا اسے جینے نہیں دے رہی, وہ اپنے فرائض ادا نہیں کر پا رہا اور ڈس آنیسٹی کا مرتکب ہو رہا ہے. اور ان سب چیزوں کے لیے اس کو اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہے. ایک بڑا سیدھا فارمولا ہے کہ نفلی عبادت کے لیے فرض عبادت کو قربان نہیں کیا جا سکتا. تو خلق خدا سے ملاقات اور ان کی دلجوئی تو نفلی عبادت ہے. تو روزگار کے معاملے میں اگر ملازمت انسان کر رہا ہے تو اس کا وہ ٹائم بکا ہوا ہے, وہ ٹائم اس کا اپنا نہیں ہے, وہ تو اس کے امپلائر نے اسے اس کے لیے وہ پے کر رہا ہے کہ وہ 5 to 9 یا 8 to 4 یا 8 to 5 جو بھی ٹائم ہے وہ اس ادارے کو دے گا. تو اگر انسان ذاتی ٹیلی فون کالز بھی سنتا ہے تو وہ میرے نزدیک ڈس آنیسٹی ہے کہ آفس آرز کے دوران اگر انسان ٹیلی فون کالز پرسنل سنتا ہے, پرسنل وزٹرز کو اٹینڈ کرتا ہے, तो डिसऑनेस्टी है, उसके लिए हमें जवाबदेह होना है अल्लाह को। तो खल्के खुदा टिकने नहीं देती, वो तो एक तांता बंदा रहता है। घर पे ये हाल होता है, वो गालबन अरस्तु थे, तो जाहिर है कि इल्म से मोहब्बत थी तो वो अरस्तु के मकाम तक जा पहुंचे। तो जहां कहीं कहीं इल्म की कोई डिस्कशन शुरू हो जाती थी तो भूल जाते थे कि मेरा कोई घर भी है और मुझे घर भी वापस जाना है, तो बाद का दो दो तीन दिन घर नहीं जा पाते थे। तो एक ऐसे ही मौके पर दो तीन दिन के बाद घर आए तो उनका एक शागिर्द उनके साथ बातें करता घर तक चला आया। तो बेगम साहिबा अरस्तु की उस वक्त फर्ज धो रही थी, तो उसने देखा अरस्तु साहब तीन दिन के बाद घर आए हैं, तो बेनकद सुनाने लगी और इंतहाई गर्जी बरसी। तो अरस्तु आगे से मुस्कुराते रहे, उस मुस्कुराहट ने और जलती पे तेल का काम कर दिया। तो बेगम ने गुस्से में आके वो जो पानी की बाल्टी जिससे फर्ज धो रही थी वो उठा के अरस्तु के ऊपर पानी उंडेल दिया। तो शागिर्द ने मजाकन कहा कि हजूर ये क्या हुआ, तो कहने लगे जो बादल इतने गरजे थे उनका बरसना भी जरूरी था। तो फिर घर में बादल आम तौर पर न सिर्फ गरजते हैं बल्कि बरसते भी रहते हैं। तो इसलिए फिर लोग तंग आके, ऐसे बुजुर्ग जो हैं साहिब इल्म लोग, वो खल्के खुदा से तंग आके मुलाकात तर्क कर देते हैं। अगर हम एहतियात ये करें कि ऐसे लोगों के पास जाते हुए हम ये देख लें कि उन्होंने कौन से औकात खल्क खुदा के लिए मखसूस किए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं औकात में जाएं और अज खुद वो टाइम पूरा होने पर कहें कि अच्छा हजूर अब आपका टाइम दूसरे काम का शुरू हो गया, मुझे इजाजत दीजिए, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई साहिब इल्म मखलूक से यूं जान छुड़ाने लगे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट संडे आपसे मुलाकात होती बशर्ते जिंदगी उस वक्त के लिए। इजाजत दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।